ये आकाशवाणी दिल्ली है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, केंद्र सरकार की सभी योजनाएं अब दिल्ली में भी लागू होंगी। मुख्यमंत्री ने आगामी बजट से पहले आज उद्योग जगत से जुड़े लोगों से मुलाकात कर सुझाव लिए। पीरागढ़ी से टीकरी बॉर्डर तक दिल्ली रोहतक रोड राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 के उन्नयन को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी। दिल्ली मेट्रो ने वसंत कुंज में गोल्डन मेट्रो लाइन के सुरंग निर्माण कार्य पूरा किया। विविधता का अमृत महोत्सव आज से राष्ट्रपति भवन में शुरू और साहित्य अकादमी का वार्षिक साहित्य उत्सव कल से नई दिल्ली के रविन्द्र भवन में आरंभ होगा। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि केंद्र सरकार की सभी योजनाएं अब दिल्ली में भी लागू होंगी और शहरवासियों को इन योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। एक निजी चैनल के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने शहर के लोगों को केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं से वंचित रखा। उन्होंने कहा कि भाजपा शासित दिल्ली सरकार अब केंद्र की सभी योजनाएं दिल्ली में लागू करेगी।
जब मोदी जी की योजनाएं पूरे देश में लागू होती थी, पर दिल्ली में कुछ लोग अपनी संकुचित मानसिकता के चलते उसे दिल्ली के लोगों को महरूम रखते थे। मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री होने के नाते ये कहना चाहूंगी कि केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं, उस पे दिल्ली का अधिकार है और वो सारी योजनाएं अब से दिल्ली में लागू होंगी।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आगामी बजट से पहले सभी व्यापारिक औद्योगिक संगठनों और उद्योग जगत से जुड़े लोगों से मुलाकात कर बजट के लिए आज सुझाव लिए। बैठक के बाद श्रीमती रेखा गुप्ता ने कहा कि उन्हें काफी अच्छे सुझाव मिले हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली के व्यापारी और औद्योगिक वर्ग को पिछली सरकार की अव्यवहारिक नीतियों के कारण बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है।
जो बड़े बड़े बाजार एरिया हैं, हर जगह शौचालयों की दिक्कत, अन्य अन्य प्रकार के सारी परेशानियां आज व्यापारी संगठनों ने हमें बताई। पर मैं आज इतना कह सकती हूँ कि पिछली सरकारें जो थी वो केवल दर्द का प्रचार करती थी। मैं कोशिश करूंगी कि इस दर्द का उपचार किया जाए।
उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी के 7वें दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर श्री सक्सेना ने विकसित भारत 2047 के लिए फार्मास्यूटिकल अनुसंधान और नवाचार में संस्थान की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज शालीमार बाग विधानसभा के अलग अलग इलाकों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने टूटी सड़कों, खराब सीवर व्यवस्था और पार्किंग जैसी समस्याओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान शालीमार गांव में स्थित एक सरकारी स्कूल में भी मुख्यमंत्री पहुंची। स्कूल में नल से पेयजल नहीं आने, खराब शौचालय और बाकी अव्यवस्थाओं पर श्रीमती रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को इन समस्याओं के जल्द से जल्द समाधान करने के निर्देश दिए। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI कोक्ष, AI कंप्यूट पोर्टल और AI आधारित कई पहलों का शुभारंभ किया। श्री वैष्णव ने इंडिया AI मिशन के अंतर्गत इन पहलों की शुरुआत की। AI कोक्ष एक इंडिया AI डेटा सेट प्लेटफॉर्म है जो डेटा सेट टूल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल तक सहज पहुंच सुनिश्चित करेगा। ये AI कंप्यूट पोर्टल के माध्यम से छात्रों, स्टार्टअप, शोधकर्ताओं और सरकारी विभागों को GPU और क्लाउड सेवाओं तक भी पहुँच प्रदान करेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने पीरागढ़ी से टीकरी बॉर्डर तक लगभग 13 किलोमीटर लंबे दिल्ली रोहतक रोड राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 के उन्नयन को मंजूरी दे दी है। इस निर्णय का स्वागत करते हुए दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि ये निर्णय लाखों यात्रियों के लिए सुगम, सुरक्षित और विश्व स्तरीय यातायात सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि इससे दिल्ली का बुनियादी ढांचा मजबूत होगा और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली मेट्रो ने आज वसंत कुंज में गोल्डन मेट्रो लाइन के लिए सुरंग का निर्माण पूरा कर लिया है। 26 किलोमीटर लंबी ये मेट्रो लाइन एरोसिटी तुगलकाबाद कॉरिडोर के अंतर्गत चलेगी। इसका निर्माण दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा चौथे चरण के विस्तार के तहत किया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि भारत का मेट्रो नेटवर्क दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है और ये इस वर्ष दिसंबर में अमरीका के न्यूयॉर्क मेट्रो नेटवर्क को पीछे छोड़ देगा। श्री मनोहर लाल ने कहा कि गोल्डन मेट्रो लाइन का काम पूरा होने से दिल्ली एनसीआर के लोगों को फायदा होगा।
डीएमआरसी के सभी हमारे अधिकारी कर्मचारियों का और जो भी टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए अन्य लोग हैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और निश्चित समय से ये जो एक लाइन है एरोसिटी से तुगलकाबाद लगभग 26 किलोमीटर की लाइन है, इसको पूरा करके दिल्ली के लोगों को एक बहुत सुविधा मिलेगी।
दिल्ली पुलिस ने 150 से अधिक दुपहिया वाहनों की चोरी में शामिल दो अंतर्राज्यीय वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि दक्षिणी पश्चिमी जिले की टीम को इन दोनों आरोपियों के किशनगढ़ गांव में अरुणा आसिफ अली रोड इलाके में होने का सुराग मिला था। आरोपियों के पास से चोरी किए गए 12 वाहन भी बरामद किए गए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के विशेष कार्यबल एसटीएफ और पंजाब पुलिस ने आज कौशाम्बी जिले में एक संयुक्त अभियान में बब्बर खालसा इंटरनेशनल और आईएसआई मॉड्यूल के एक सक्रिय आतंकवादी लजार मसीह को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने बताया कि आरोपी मसीह ने प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान बड़े आतंकी हमले की साजिश रची थी, लेकिन कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के कारण वे अपनी योजना में विफल रहा।
महाकुंभ के आयोजन के पहले ऐसे विघटनकारी तत्वों के द्वारा जो कि देश और विदेश में मौजूद थे उनके द्वारा गड़बड़ी फैलाने की तथा कुछ ऐसी घटनाएं कारित करने की सूचना दी गई थी। उसी के क्रम में एक महत्वपूर्ण सफलता उत्तर प्रदेश के एटीएस को मिली है और ये कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस की एसटीएफ तथा पंजाब पुलिस के द्वारा जॉइंट ऑपरेशन में की गई है।
नशा मुक्त भारत अभियान के तहत ड्रग्स के खिलाफ दिल्ली पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। इस कड़ी में दो मामलों में वांछित एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि इस कार्रवाई में 69 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 35 लाख रुपए आंकी गई है। दुनिया भर में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा। इस दिन महिलाओं को राष्ट्रीय, जातीय, भाषाई, सांस्कृतिक, आर्थिक या राजनीतिक सीमाओं से अलग हटकर उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मान दिया जाता है। इस साल महिला दिवस का विषय है सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार, समानता, सशक्तिकरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से पहले नमो ऐप ओपन फोरम पर अपनी प्रेरक जीवन यात्रा साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया है। प्रधानमंत्री ने एक विशेष पहल के रूप में घोषणा की है कि चयनित महिलाएं अपने विचार और अनुभव अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए 8 मार्च को उनके सोशल मीडिया अकाउंट को संभालेंगी। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं के योगदान का सम्मान करना और उनके सशक्तिकरण, दृढ़ता और सफलता की यात्रा से दूसरों को प्रेरित करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। सम्मेलन का विषय है नारी शक्ति से विकसित भारत।
महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बलों के अधिकारी, दिल्ली पुलिस, माई भारत स्वयंसेवक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और स्वयं सहायता समूह के सदस्य सहित विभिन्न क्षेत्रों की महिलाएं भाग लेंगी। सम्मेलन में विश्व बैंक, यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र महिला, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। साथ ही शी बिल्ड्स भारत के साथ एक सोशल मीडिया अभियान भी आयोजित किया जा रहा है। आदर्श की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए वैष्णवी।
महिला दिवस को लेकर महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि ये दिन महिलाओं के बहुमुखी विकास पर चर्चा करने और बाधाओं को समाप्त करने का अवसर प्रदान करता है।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हमें एक अवसर देता है जब हम उनके चहुमुखी विकास का उत्सव मनाएं और साथ ही साथ यह संकल्प भी लें कि उनके विकास की यात्रा में आने वाली समस्त बाधाओं को हम सामूहिक रूप से दूर करने का हर संभव प्रयास करेंगे।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि प्रगतिशील समाज के निर्माण के लिए नागरिकों को छुआछूत, जाति आधारित भेदभाव और असमानताओं से मुक्त होना होगा। वे आज नई दिल्ली में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर महिला सम्मान से जुड़े कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस कार्यक्रम में 30 से अधिक महिलाओं को सामाजिक सुधारों में अमूल्य योगदान के लिए सम्मानित किया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। विविधता का अमृत महोत्सव आज से राष्ट्रपति भवन में शुरू हो गया है। रविवार तक चलने वाला ये महोत्सव विभिन्न क्षेत्रों की अनूठी परंपराओं को प्रदर्शित करके देश की विविधता की विरासत का जश्न है।
इस महोत्सव का उद्देश्य राष्ट्रपति भवन को सांस्कृतिक आदान प्रदान का केंद्र बनाना है। इस महोत्सव में 500 से अधिक कारीगर और बुनकर पारंपरिक हस्तशिल्प और हथकरघा का प्रदर्शन करेंगे। इसमें कांजीवरम और कसावू साड़ियाँ, पोचमपल्ली इकत, मैसूर रेशम और जटिल पीतल और लकड़ी के शिल्प शामिल हैं। इस वर्ष यह सम्मेलन दक्षिण भारत पर केंद्रित है, जिसमें लक्षद्वीप और पुद्दुचेरी के साथ साथ 5 राज्य कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश शामिल हैं। 400 से अधिक कलाकार दक्षिण भारत के लोक और शास्त्रीय नृत्य तथा संगीत प्रस्तुत करेंगे। ये प्रातः 10 बजे से रात्रि 8 बजे तक लोगों के लिए खुला रहेगा। सकलेन की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए शक्ति सिंह।
अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार का 39वां संस्करण नई दिल्ली के भारत मंडपम में जारी है। 5 दिवसीय इस कार्यक्रम में 22 देशों के 1,700 से अधिक प्रदर्शक भाग ले रहे हैं। एक रिपोर्ट।
आहार मेला एशिया के सबसे बड़े बिजनेस टू बिजनेस खाद्य और आतिथ्य मेलों में से एक है। 38 वर्षों की समृद्ध विरासत के साथ यह मेला वैश्विक विक्रेताओं और खाद्य जगत से जुड़े पेशेवर लोगों के लिए एक बेहतर मंच बन गया है। यह आयोजन फूड और हॉस्पिटैलिटी से जुड़े विभिन्न हितधारकों द्वारा बेकरी और कृषि उत्पादों, प्रोसेस्ड फूड, ऑर्गेनिक और सी फूड, मसालों सहित अन्य उत्पादों से जुड़े संभावनाओं को तलाशने में मददगार साबित हो रहा है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए उत्तर प्रदेश से आए एक प्रदर्शक ने अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने हेतु मंच प्रदान करने के लिए सरकार का धन्यवाद किया।
मैं रुचिर, हम लोगों को ये भारत सरकार की तरफ से मौका मिल रहा है आहार फेयर में पार्टिसिपेट करने का, जहां और 22 कंट्रीज भी पार्टिसिपेट कर रही हैं। हम इस मौके के लिए बहुत ही भाग्यशाली हैं और भारत सरकार के आभारी भी हैं।
यह मेला इस हफ्ते की शनिवार तक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। मेले में प्रवेश हेतु आगंतुकों के लिए ₹300 में एक दिवसीय पास उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार के लिए भानु प्रताप सिंह।
दिल्ली के रविंद्र भवन में कल से साहित्य अकादमी का वार्षिक साहित्योत्सव शुरू हो रहा है। 6 दिनों तक चलने वाला ये कार्यक्रम एशिया का सबसे बड़ा साहित्य उत्सव होगा। इस बार साहित्योत्सव में देश के विभिन्न हिस्सों से 50 से अधिक भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 700 से अधिक लेखक हिस्सा लेंगे। साहित्योत्सव में प्रवेश निःशुल्क है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने घोषणा की है कि इस वर्ष दूसरे खेलो इंडिया पैरा गेम्स 20 से 27 मार्च तक नई दिल्ली में आयोजित किए जाएंगे। इसमें विश्व के कई खिलाड़ी भाग लेंगे। इस दौरान लगभग 1230 पैरा एथलीट 6 विधाओं में प्रतिस्पर्धा करेंगे, जिनमें पेरिस पैरालंपिक 2024 और चीन के हांगचाओ में आयोजित एशियाई पैरा गेम्स 2022 के पदक विजेता भी हिस्सा लेंगे। दिल्ली में आज मौसम सामान्य रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 12.2 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान मौसम सामान्य रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, केंद्र सरकार की सभी योजनाएं अब दिल्ली में भी लागू होंगी। मुख्यमंत्री ने आगामी बजट से पहले आज उद्योग जगत से जुड़े लोगों से मुलाकात कर सुझाव लिए। पीरागढ़ी से टीकरी बॉर्डर तक दिल्ली रोहतक रोड राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 के उन्नयन को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी। दिल्ली मेट्रो ने वसंत कुंज में गोल्डन मेट्रो लाइन के लिए सुरंग का निर्माण पूरा किया। विविधता का अमृत महोत्सव आज से राष्ट्रपति भवन में शुरू और साहित्य अकादमी का वार्षिक साहित्य उत्सव कल से नई दिल्ली के रविंद्र भवन में आरंभ होगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।